एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
मेरे प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का दास फिर से आपको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आज आया हूँ। आज मेरा संदेश का शीर्षक है, यीशु एक कोढ़ी व्यक्ति को चंगा कर सकता है। आइए इस संवाद को सुनने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, तू हमारी मदद कर। जैसे हम तेरे वचनों को सुनते हैं हमारे हृदयों को खोल दे, हमें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला, हमें समझ शक्ति दे, हम तेरे बातों को जान सके, हम तेरे सच्चाइयों को जान सके और हम तेरे राह में चलने सके। पिता हमारे मनों को छू दे, विशेषकर मेरे संग हो पिता, मुझे बुद्धि दे, मुझे तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला कि मैं तेरे सच्चाई को तेरे वचन को सही तरीका से तेरे लोगों को सुना सकूं। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। यीशु एक कोढ़ी को चंगा कर सकता है। पूर्वी देशों में जितनी भी बीमारियों का लोगों को ज्ञान था उनमें सबसे अधिक भयानक रोग कोढ़ का था। यह एक लाइलाज था तथा छूत का रोग माना जाता था। यह रोग रोगी के शरीर को भयंकर रूप से प्रभावित करता और बहादुर से बहादुर व्यक्ति भी भयातुर हो जाता था। यहूदियों में यह समझा जाता था कि यह रोग उनके पापों के कारण परमेश्वर का न्याय है, इसलिए इसे चोट करना या परमेश्वर की उंगली उठना भी कहते थे। यह रोग बहुत ही भयानक गहराई तक बैठा हुआ और जिसकी कोई दवा नहीं थी, इसे पाप के प्रतीक की संज्ञा दी जाती थी। रीति के नियमानुसार एक कोढ़ी को अशुद्ध कहकर पुकारा जाता था, उसे एक मुर्दे के समान मानकर समाज से गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। जिस भी वस्तु को वह छू दे वही वस्तु अशुद्ध हो जाती थी, उसकी सांसों से हवा की अशुद्ध हो जाती थी। यदि किसी को कोढ़ होने का संदेह होता था तो उसे याजक को दिखाना आवश्यक होता था, वही उसका निर्णय करता था कि उसे कोढ़ है अथवा नहीं। यदि उसे कोढ़ी घोषित कर दिया गया तो उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता, इज़राइल जाति से निकाल दिया जाता और उसे उन्हीं लोगों के बीच रहने और मरने के लिए छोड़ दिया जाता था जो पहले से ही इस रोग से पीड़ित होते थे। इस विषय में नियम बहुत कठोर थे, यहाँ तक कि राजा और अधिकारी भी इन नियमों से बंधे होते थे। यदि एक सम्राट भी इस भयानक रोग का शिकार हो जाता था तो उसे राजगद्दी छोड़कर समाज से बाहर भाग जाना पड़ता था, अपने मित्रों सगे संबंधियों से दूर कोढ़ी को इस रोग के श्राप को भुगतना आवश्यक था। उसे अपनी अशुद्धता का प्रचार करना जरूरी था, अपने कपड़ों को फाड़ कर रखने और चलते समय चेतावनी देने के लिए चिल्लाते रहने ताकि लोग उनसे दूर हट जाए अत्यंत आवश्यक होता था। दर्द भरी आवाज में उनका चिल्लाना अशुद्ध अशुद्ध लोगों को खतरे से सावधान करने के लिए होता था और लोग भय से घबराकर उनसे दूर हो जाते थे। जिस क्षेत्र में यीशु अपना कार्य कर रहा था उस क्षेत्र में ऐसे रोगियों की संख्या कुछ अधिक ही थी और उसके अद्भुत कार्यों का समाचार उन तक भी पहुंचा, उनमें भी आशा की किरण जाग उठी। परंतु एलिशा भविष्यवक्ता के समय से लेकर आज तक कहीं कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी जहां पर कोढ़ का रोगी शुद्ध किया गया हो। उन्हें यह आशा नहीं थी कि यीशु ने जिस चमत्कार को किसी के लिए नहीं किया है वह उनके लिए करेगा, परंतु एक ऐसा रोगी था जिसके मन में विश्वास जाग उठा था, फिर भी उसे यह नहीं ज्ञात था कि यीशु के पास तक कैसे पहुंचे। जैसा कि वह लोगों और समाज से निष्कासित था, वह कैसे अपने आप को चंगाई देने वाले के सामने आए। मन में प्रश्न करने लगा कि क्या मसीह उसे चंगा कर सकता है, क्या वह उसकी ओर नजर उठाकर देखेगा जो परमेश्वर के न्याय के कारण कष्ट उठा रहा है, क्या वह भी फरीसियों और यहाँ तक कि व्यवस्थापकों द्वारा उसके पाप के फल की संज्ञा नहीं देगा और चेतावनी देगा कि लोगों के बीच से भाग जाओ, नहीं तो मार डाले जाओगे। उसने उन सभी बातों पर विचार किया जो यीशु के विषय में सुन रखा था, कि जो भी उससे मदद मांगने के लिए आया, कोई भी निराश नहीं लौटाया गया। इस अभागे ने ठान लिया कि वह मुक्तिदाता के पास जाएगा। यद्यपि नगर में प्रवेश करना मना था, परंतु हो सकता है कि वह पहाड़ी पर जाते समय इधर किसी रास्ते से गुजरते, या फिर जब वह कस्बे से बाहर लोगों को उपदेश दे रहा हो तो मिल सकता है। कठिनाई तो बहुत बड़ी थी, परंतु केवल यही एक आशा भी थी। कोढ़ी मुक्तिदाता के पास लाया गया। यीशु झील के किनारे उपदेश दे रहा था और बहुत से लोग वहां उसके पास इकट्ठे हुए थे। दूर खड़े हुए कोढ़ी ने मुक्तिदाता के होठों से निकलते हुए शब्द सुने। उसने देखा कि वह अपना हाथ एक बीमार के सिर पर रख रहा है। उसने लंगड़े को देखा, अंधे को देखा, लकवा के मारे को देखा और दूसरों को जो अन्य रोगों से ग्रसित थे उन्हें चंगे होते हुए देखा। वे अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे। उसके हृदय में विश्वास बढ़ने लगा। वह उस इकट्ठी भीड़ के पास और पास धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोगों की सुरक्षा के नाते उस पर बंदिश लगी हुई थी और लोग उसे किस दृष्टि से देखते हैं वह भूल गया। केवल उसके मन में चंगाई की आशीष पाने की आशा रह गई थी। वह देखने में एक जीवित लोथ दिखाई दे रहा था। कोढ़ ने उसके शरीर को गलाकर भद्दा बना दिया था। उसका गलता हुआ शरीर देखने से ही भयानक लग रहा था। उसे देखते ही लोग आतंक के मारे इधर उधर हट गए। लोग उससे छू जाने के डर से एक दूसरे पर गिरते पड़ते वहां से भागने लगे। कुछ लोगों ने तो उसे यीशु तक पहुंचने में रुकावट भी डाली, परंतु सब व्यर्थ रहा। वह ना तो उनकी ओर देखा और ना उनकी बातों को सुना। उन लोगों का उसको रोकना काम ना आया। वह तो केवल परमेश्वर के पुत्र पर आंखें लगाए आगे बढ़ता रहा। वह केवल उन शब्दों को सुन रहा था जो मर रहे लोगों को यीशु सुना रहा था। यीशु की प्रशंसा करते हुए उसके पैरों पर गिरकर चिल्ला पड़ा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने उसका उत्तर देते हुए अपने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा, जिसे हम मत्ती के 8वां अध्याय का 3रा पद में पाते हैं। तुरंत ही उस कोढ़ी में एक बदलाव आ गया। उसके शरीर का मांस स्वस्थ हो गया, नसों में चेतना आ गई, मांसपेशियां कठोर हो गईं, कोढ़ के चिन्ह खुरदरे लटकते मांस गायब हो गए, उसके स्थान पर कोमल मांस चढ़ गया। जैसे कि एक स्वस्थ बच्चे का शरीर होता है, वैसा ही उसका शरीर हो गया। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वह किसी से ना कहना, परंतु सीधे जाकर आराधनालय में धन्यवाद की भेंट चढ़ा। ऐसी भेंट आराधनालय में तब तक स्वीकार नहीं किया जाता था जब तक याजक आकर उस व्यक्ति की जांच ना कर लेता और यह घोषित नहीं कर देता कि अब वह व्यक्ति कोढ़ से मुक्त है। यद्यपि अनिच्छा पूर्वक वे लोग इस जांच को करते थे, क्योंकि वे इस जांच को टाल नहीं सकते थे, उन्हें फैसला सुनाना आवश्यक होता था। पवित्र शास्त्र इस विषय में बताता है कि क्या कारण था कि मसीह ने उसे मना कर दिया था कि वह चुप रहे, किसी से कुछ ना कहे। उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। यदि याजक को यह मालूम पड़ जाए कि किस प्रकार से किसने उस कोढ़ी को चंगा किया है तो मसीह के प्रति उनकी घृणा के कारण हो सकता है कि उस पर उल्टे बेईमानी का आरोप लगाकर दंडित कर दें। यीशु चाहता था कि इससे पहले कि इस चमत्कार का समाचार चारों ओर फैल जाए वह अपने आप को आराधनालय में प्रस्तुत कर दे। इस प्रकार से बिना किसी पक्षपात के उसका निर्णय हो जाएगा और वह चंगाई पाया हुआ कोढ़ी अपने परिवार और मित्रों के साथ फिर से एक हो जाने के लिए अनुमति पा जाएगा। मसीह की वह चेतावनी की घटना सही साबित हुई। कोढ़ी को चंगाई पाते हुए एक बहुत भीड़ ने देखा था और वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि याजक का क्या फैसला होता है। जब वह व्यक्ति अपने मित्रों के बीच पहुंचा तो वहां पर अत्यंत ही उत्तेजना फैल गई। यीशु के चेतावनी को देखते हुए वह व्यक्ति अपनी चंगाई की वास्तविकता को नहीं छिपा सका और देखा जाए तो यह संभव भी नहीं था कि वह अपनी दशा को छिपा ले। परंतु चंगाई पाए हुए कोढ़ी ने इस बात को चारों ओर फैला दिया। उसने सोचा कि यह यीशु की शालीनता थी कि उसने इसे बताने के लिए मना कर दिया था। वह उस महान चंगाई देने वाले की सामर्थ्य के विषय में चारों ओर घोषणा करते हुए चला गया। वह इस बात को नहीं समझ सका था कि इस प्रकार की जितनी ही बातों का प्रचार होगा उतना ही अधिक याजक और पुरनिये लोग यीशु को नष्ट कर डालने की ठान लेंगे। चंगाई पाए हुए व्यक्ति ने अनुभव किया कि स्वास्थ्य का वरदान बहुत ही मूल्यवान होता है। वह अपनी मर्दानगी की शक्ति को पाकर और परिवार तथा समाज में वापस आकर अति आनंदित हुआ और महसूस किया कि उस महान वैद्य की जिसने उसे चंगा किया है उसकी प्रशंसा और स्तुति करने से उसका रुकना असंभव है। परंतु उसका चारों ओर ढिंडोरा पीट देने का परिणाम यह हुआ कि मुक्तिदाता के कार्य में रुकावट पड़ गया। भीड़ की भीड़ यीशु के पास उमड़ पड़ी। लाचार होकर यीशु को कुछ समय के लिए उसके कार्य को बंद करना पड़ा। मसीह के प्रत्येक सेवकाई के कार्य करने का उद्देश्य बहुत दूरदर्शी का होता था। प्रत्येक कार्य देखने में कदाचित मामूली सा दिखाई दे परंतु उसका सार बहुत गंभीर होता था। इसी प्रकार से कोढ़ी की चंगाई का था। यीशु ने उन सभी की सेवा की जो उसके पास आए थे, परंतु उसकी इच्छा थी कि जो नहीं आए उन्हें भी आशीष दे। फरीसी लोगों का मानना था कि जो शिक्षा मसीह दे रहा है वह मूसा द्वारा परमेश्वर की दी गई हुई शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। परंतु उसका उस कोढ़ी को याजक के पास भेजने तथा उचित भेंट चढ़ाने के लिए कहना इस इल्जाम को गलत साबित कर रहा था। इतनी गवाही ही उन सब लोगों के लिए काफी थी जो समझने की इच्छा रखते थे। कोढ़ी को उसके भयानक रोग से पाक साफ करना मसीह का आत्मा को पाप से पाक साफ करने का एक प्रतीक है, एक उदाहरण है। जो व्यक्ति यीशु के पास आया था वह पूर्ण रूप से कोढ़ी था। उस खतरनाक जहर ने उसके संपूर्ण शरीर को सड़ा दिया था। चेलों ने प्रयत्न किया कि उनका गुरु उसको ना छुए, क्योंकि जो एक कोढ़ी को छू ले वह स्वयं अशुद्ध हो जाता था। परंतु जब यीशु ने उस कोढ़ी पर अपना हाथ रखा तो उस पर कोढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वह हमारा चंगा करने वाला है, वह हमारा उद्धार करता है। उसे कोई भी बीमारी अशुद्ध नहीं कर सकता है। उसके स्पर्श ने उसे जीवनदायक शक्ति दे दी थी, कोढ़ साफ हो गया। इसी प्रकार से पाप के कोढ़ के साथ है, बहुत गहराई तक जकड़ा हुआ पाप, भयंकर पाप, और मनुष्य की शक्ति से साफ होने में असंभव पाप। तुम्हारा सिर घावों से भरा हुआ है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। यशायाह 1:5-6 में यह वर्णन किया गया है एक पापी व्यक्ति के दशा को। परंतु यीशु इंसान के बीच में रहने के लिए आया, परंतु उस पर किसी प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ा। पापी के लिए उसकी उपस्थिति में ही चंगाई के गुण हैं। जो भी विश्वास के साथ यह कहते हुए उसके चरणों में आ जाता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो उसे उत्तर मिलेगा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। कहीं कहीं वह चंगाई देने की घटना में मांगी गई आशीष को यीशु ने तुरंत नहीं दिया, परंतु इस कोढ़ के विषय में ज्यों ही विनती की गई त्यों ही उस विनती को स्वीकार कर लिया गया। जब हम संसारिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में देरी हो सकती है, या हमारी मांग के बदले में परमेश्वर कुछ और देता है। परंतु पाप से छुटकारा पाने की प्रार्थना में ऐसा नहीं होता है। यह उसकी इच्छा है कि हमें अपनी संतान बनाने के लिए और एक पवित्र जीवन बिताने के लिए पाप से धोकर साफ कर दे। मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। गलतियों 1:4 कहती है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वह पाया है। 1 यूहन्ना 5:14-15 हमें यह बतलाती है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह प्रतिज्ञा हमें बाइबल की पुस्तक 1 यूहन्ना 1:9 में मिलता है। तो प्रभु परमेश्वर हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया, हमसे इतना प्रेम किया, वह हमसे चाहता है कि हम पाप से छुड़ाए जाए। वह हमें पाप से छुड़ाना चाहता है और धोना चाहता है और अपना बालक, अपना बेटा बेटियां बनाना चाहता है। वह हमें पवित्र करना चाहता है और हम पवित्र होकर उसके अच्छे बेटे बेटियां होकर उसके राह में चले, वह इसका कामना करता है, उसका यह इच्छा है। आइए हम भी अपने मन में यह सोचे और इच्छा करें कि हम पवित्र जीवन बिताएं, अपने पापों से छुटकारा पाएं, यीशु मसीह के पास आएं, यीशु मसीह की ओर अपने आँखों को लगाएं, यीशु मसीह पर भरोसा करें, जिस तरह यह कोढ़ी व्यक्ति ने यीशु मसीह पर भरोसा किया। वही उसका आखिरी आशा था और यीशु मसीह उसको पीछे नहीं लौटाया। उस व्यक्ति को भी वह छुआ और उसे चंगा किया, और उसे छूने से यीशु मसीह को अशुद्ध होना नहीं पड़ा, क्योंकि वह हमारा सृष्टि करता है, वह हमारे हर एक रोगों का चंगा करने वाला है, वह हमारा बनाने वाला है। आइए हम उस पर भरोसा करें और उसको धन्यवाद दें, और आइए हम उसके पास आते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरी धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमें अच्छा संदेश सुनाया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस वचन को अपने हृदय में रखें और जाने कि तू हमसे कितना प्रेम करता है, और तू चाहता है कि हम पाप से छुटकारा पाए, और तू हमें पाप से छुटकारा पाने के लिए अपना बेटा प्रभु यीशु को भेजा कि उसके जीवन से, उसके लहू बहाए हुए से हम पाप से, हर एक बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, हम चंगे हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमें यीशु मसीह के अनुग्रह से, उसके बलिदान से, कुर्बान से हमें चंगा कर और हमारे पापों से धो डाल, और हमें तेरे बालक बेटे और बेटियां बना, और हमें पवित्र जीवन यापन करने के लिए मदद और अगुवाई कर। पिता हमें आशीष दे। हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान,
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।